नमस्कार श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम नए नियम की पुस्तक में से मरकुस रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक से आपको लाभ मिल रहा है। इसमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उसकी सेवकाई के विषय में बताया गया है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों।
प्रिय मित्र, आप सबको प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब आज भी प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं और उसकी निकटता में रहकर स्वस्थ और भले चंगे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि किस प्रकार परमेश्वर अपने सामर्थ्य के कार्यों को प्रकट किए, और आज हम अपने अध्ययन को अध्याय 6 से आरंभ करेंगे जो मरकुस रचित सुसमाचार से है। मित्रों, मरकुस के सुसमाचार वृतांत का यह सबसे बड़ा अध्याय है। मरकुस गतिविधियों की अपनी वही शैली बनाए रखता है, परंतु पहले 19 पदों में गति कुछ कम दिखाई देती है। यीशु नासरत लौट आता है और अपने 12 शिष्यों को प्रचार करने भेजता है। वे लौट कर आते हैं और उसे ब्यौरा देते हैं, और अगली घटना में वे यह जन समूह को खाना खिलाता है जिसमें 5,000 पुरुष हैं। उसके उपरांत वह पानी पर चलता है और गन्नेसरत में रोगियों को चंगा करता है। अध्याय के अंत में यीशु गलील सागर के पश्चिम तटीय क्षेत्र में सेवारत हैं, और यीशु इस समय अत्यधिक प्रसिद्ध हो गए हैं। यह उसकी सेवा की चरम सीमा का समय था। तो आइए हम मरकुस 6 उसके 1-3 पद को पढ़ें। लिखा है, वहां से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले उसके पीछे हो लिए। सप्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहां से आ गई, और यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है, और कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब और योसेस और यहूदा और शमौन का भाई है, और क्या उसकी बहनें यहां हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। मित्रों, इस घटना की तुलना लूका अध्याय 4 से करते हुए आलोचक बाइबल में विरोधाभास पर उंगली उठाते हैं। उनका कहना है कि ये दो विवरण एक दूसरे के विरोधी हैं। सत्य तो यह है कि यीशु 2 बार अपने अधिवास गया था। लूका पहली बार का उल्लेख करता है जब वह वहां अकेला गया था और वहां के निवासियों ने उसे स्वीकार नहीं किया। मरकुस के अध्याय 6 में यीशु अपने शिष्यों के साथ वहां जाता है, और यह उसका दूसरा भ्रमण था। वह अनेक बार वहां गया होगा, परंतु लेखों में ये 2 बार का उल्लेख हमें मिलता है। इस बार उसने वहां रोगियों को चंगा किया और कुछ समय वहां ठहरा। हमत्र चिशु समाचार 13 अध्याय उसके 53-58 पद में इसका उल्लेख को पाते हैं। दोनों ही बार वह आराधनालय में गया और शिक्षा दी। दोनों बार उसके ग्रामवासियों ने उसे स्वीकार नहीं किया। अतः यह परस्पर विरोधी वृतांत नहीं है। वह 2 बार वहां गया था, और पहली बार उसका परित्याग किया गया था और उसने कफरनहूम को अपना सेवा केंद्र बना लिया था, क्योंकि वह अपने ग्रामवासियों को शुभ संदेश सुनाना चाहता था, इसलिए वह फिर से वहां पर गया। मित्रों, पद 1 में लिखा है अपने देश, जिसका अर्थ है अपने पिता के गांव। यीशु का यह अभ्यास था कि वह जहां कहीं भी हो सप्त के दिन वह आराधनालय में अवश्य जाता था। मेरे विचार में वह परमेश्वर की आराधना करना चाहता था, और आराधनालय एक ऐसा स्थान भी था जहां वह मनुष्यों में सुसमाचार सुना सकता था। उसकी शिक्षाओं से उसके परिचित जन आश्चर्यचकित थे। उसके वचन, उसके कार्य और आश्चर्यकर्म के कारण वहां के लोगों पर भय छा गया था और वे प्रश्न करने लगे थे। मित्रों, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि नासरत से यीशु जैसा कोई पुरुष उत्पन्न हो सकता है। वे अपने आप को देखते थे और नासरत का मूल्यांकन करते थे। उनके विचार में नासरत अग्रगामी नहीं था। उन्हें न तो किसी में विश्वास था और न ही अपने आप में विश्वास था। तो हम इस अंश में यह भी स्पष्ट होते हुए देखते हैं कि मरियम की अन्य संतान भी थी, यीशु के भाई और बहन। जिस यहूदा का नाम यहां दिया गया है, वह मेरे विचार में यहूदा की पत्रिका लेखक ही है। उन्होंने यीशु को बाल्यकाल से ही देखा था, अतः वे उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। यही उनके लिए ठोकर का कारण था। मेरे विचार में यीशु से जानकारी खतरनाक है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसे हम जान नहीं पाएंगे। यही उनकी समस्या थी। मार्कुस 6 उसके 4 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, यीशु ने उससे कहा कि भविष्यवक्ता अपने देश में और कुटुंब और अपने घर को छोड़ कहीं भी निरादर नहीं होता। मित्रों, यदि हम ऐसा कहें तो उचित होगा, आपका विशेषज्ञ पड़ोस के शहर का एक साधारण व्यक्ति है। हमारी मानसिकता कुछ ऐसी है कि हम बाहर से आने वाले व्यक्ति को अपनों से अधिक ज्ञानवान समझते हैं। मेरे विचार में यही कारण है कि प्रचारक परदेश में जाकर प्रचार करते हैं, और यह सच भी है कि हम अपने अधिवास की तुलना में किसी अन्य स्थान में अधिक प्रभावी सिद्ध होते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर, जो कहावत है, बिल्कुल ठीक बैठती है। तब हम मार्कुस 6 उसके 5 और 6 पद में आगे पढ़ते हैं, और वह वहाँ कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया, और उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया और चारों ओर के गांवों में उपदेश करता फिरा। मित्रों, आप देखेंगे कि इस बार वह वहां से हटा नहीं, वह उसी परिवेश में रहा। पिछली बार तो उसे एक प्रकार से धक्का देकर निकाल दिया गया था। यह एक ध्यान देने योग्य अंश है, क्योंकि लिखा है कि वह वहां सामर्थ का काम नहीं कर पाया, क्योंकि वे अविश्वासी थे। मित्रों, परमेश्वर के सामर्थ को सीमित करने में एकमात्र कारण है अविश्वास। उद्धार के निमित्त परमेश्वर के सामर्थ को प्रवाहित करने के लिए विश्वास आवश्यक है। यशायाह 53 जैसा महान अध्याय इस तथ्य को प्रकट करता है कि यीशु का विश्वास नहीं किया जाएगा। उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? यशायाह 53 उसके 1 पद में हम इसे पढ़ते हैं। मेरे मित्रों, अविश्वास परमेश्वर के सामर्थ को रोकता है और दूर करता है। पद 6 में लिखा है कि यीशु को उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। यह पहला अवसर नहीं है कि यीशु को किसी बात पर आश्चर्य हुआ। मत्ती 8 अध्याय के 10 पद में भी यीशु को सुबेदार से विश्वास की बात सुनकर अचंभा हुआ था। मित्रों, आगे हम देखते हैं कि वह वहां आसपास के गांव में उपदेश करता रहा। आज के मसीह सेवकों के लिए यह एक उत्तम शिक्षा है। अनेक सेवक मेरी आलोचना करते हैं कि मैं छोटी कलीसियाओं में प्रचार करता हूं। मेरे मित्रों, विचार कीजिए कि महिमा का प्रभु परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पर छोटे छोटे गांव में प्रचार कर रहा था। उसने हमारे लिए एक आदर्श स्थापित कर दिया है। वह चाहता तो रोम के किसी भी बड़े नगर में सभा का आयोजन कर सकता था। आज अनेक प्रचारक इस मानसिकता से ग्रस्त हैं कि उन्हें प्रचार करने के लिए विशाल जन समूह की उपस्थिति चाहिए। मित्रों, हमें हमारे प्रभु यीशु से सीखने की आवश्यकता है। मित्रों, आप में से अनेकों ने इंग्लिश की स्कोफील्ड बाइबल देखी होगी। इस बाइबल के संपादक डॉक्टर C.I. स्कोफील्ड के जीवन की एक घटना है। उन्हें किसी आराधनालय में प्रवचन सुनाने के लिए आमंत्रित किया गया। वर्षा के कारण सभा में केवल 25 लोग ही आ पाए थे। वहां के पासवान ने डॉक्टर स्कोफील्ड से क्षमा याचना की कि श्रोतागण बहुत कम है। डॉक्टर स्कोफील्ड ने उत्तर दिया, मेरे युवा दोस्त, प्रभु यीशु के विद्यालय और कलीसिया में तो केवल 12 मनुष्य ही थे, तो स्कोफील्ड क्यों कर बड़ी भीड़ की चिंता करे। मित्रों, यह सच है। तब हम मार्कुस 6 उसके 7 पद में पढ़ते हैं, और वह 12 को अपने पास बुलाकर उन्हें 2-2 करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। मित्रों, यीशु अपने शिष्यों को प्रचार के लिए भेजता है। वह उन्हें मन फिराव के संदेश के साथ भेजता है। यही संदेश मसीह यीशु का प्रचार विषय था। वह उन्हें 2-2 करके भेजता है। यह बड़ी रोचक बात है कि मत्ती और लूका ने यह बात नहीं लिखी। यीशु ने उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार संपन्न किया। यह सर्वोच्च अधिकार है जिसका वे उपयोग करेंगे। मार्कुस 6 उसके 8 और 9 पद में हम पढ़ते हैं, और उसने उन्हें आज्ञा दी कि मार के लिए लाठी छोड़ और कुछ ना लो, ना तो रोटी, ना झोली, ना पटुके में पैसे, परंतु जूतियां पहनो और 2-2 कुर्ते ना पहनो। मित्रों, यीशु ने ऐसा आदेश क्यों दिया? उन्हें यात्रा में आसानी होती थी। इससे प्रकट होता है कि उनके पास समय बहुत कम था और कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण था। दूसरी ओर यीशु चाहता था कि वे परमेश्वर पर आश्रित होना सीखें। आगे चलकर हम देखेंगे कि यीशु उन्हें यह सब साथ रखने को कहता है, क्योंकि तब वे लंबी यात्रा पर निकलने वाले थे। मत्ती के सुसमाचार वृतांत से स्पष्ट है कि इस यात्रा में उन्हें केवल इसराइल की भटकी हुई भेड़ों तक पहुंचना था। और उनका अतिथि सत्कार ग्रहण करना था। मार्कुस 6:10-11 पद में लिखा है, और उसने उनसे कहा, जहां कहीं तुम किसी घर में उतरो तो जब तक वहां से विदा न हो तब तक उसी में ठहरे रहो। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण न करें और तुम्हारी न सुने वहां से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। मित्रों, उनकी यह यात्रा गंभीर और पावन थी। परमेश्वर के अनुग्रह का तिरस्कार करना उसके दंड का भागी बनाता है। आज भी ऐसा ही होता है जो बहुत सारे लोग अपने जीवन में करते हैं। तब हम मार्कुस 6:12-13 पद में आगे पढ़ते हैं, और उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ और बहुत तेरे दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। मित्रों, उन्होंने मन फिराओ का प्रचार किया और आश्चर्य कर्मों ने उनके संदेश की प्रामाणिकता को सिद्ध किया। उनका यह दूत कार्य इसराइल के घराने की भटकी हुई भेड़ों के मध्य था, परंतु आज की स्थिति ऐसी नहीं है। मन फिराव सुसमाचार का एक भाग है जो विश्वास पर आधारित होता है। मित्रों, इस घटना का विवरण मत्ती के सुसमाचार में अधिक विस्तार से दिया गया है। यीशु का नाम उस संपूर्ण प्रदेश में फैल गया था, यहाँ तक कि हेरोदेस के कानों में भी यीशु की चर्चा पहुंच गई थी। यहाँ हेरोदेस की प्रतिक्रिया को देखिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या वह कुछ समय पूर्व कर चुका था, और मेरे विचार में यहाँ उसके नाम का उल्लेख करने का कारण मात्र यही है कि हेरोदेस के इस विचित्र और अंधविश्वासी स्वभाव को प्रकट किया जाए। मार्कुस 6:14-15 पद में हम पढ़ते हैं, और हेरोदेस राजा ने उसकी चर्चा सुनी क्योंकि उसका नाम फैल गया था, और उसने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे ये सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। औरों ने कहा यह एलिया है, परंतु औरों ने कहा भविष्यवक्ता या भविष्यवक्ताओं में से किसी एक के समान है। मित्रों, हेरोदेस तो अंधविश्वासी था ही, परंतु जनसाधारण में भी कोतूहल से पूर्ण प्रतिक्रियाएं थी कि यीशु कौन है। आज भी यीशु के बारे में लोगों के भिन्न भिन्न विचार हैं। उसकी उपस्थिति, उसके सामर्थ, उसके व्यक्तित्व के बारे में वे सब अलग अलग प्रकार की बातों को बोलते हैं, और हेरोदेस निसंदेह भयभीत था। मार्कुस 6:16 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, हेरोदेस ने यह सुनकर कहा, जिस यूहन्ना का सिर मैंने कटवाया था वही जी उठा है। मित्रों, हेरोदेस बहुत डरा हुआ था। तब हम आगे पढ़ते हैं 6:17-18 पद में, क्योंकि हेरोदेस ने आप अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण, जिससे उसने विवाह किया था, लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वा कर बंदीगृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था कि अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं। मित्रों, यीशु की सेवा के इस समय से पूर्व यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मारा जा चुका था। भाई की पत्नी से विवाह करने के लिए यूहन्ना ने हेरोदेस की निंदा की थी। इसका बदला लेने के लिए हेरोदियास ने षड्यंत्र रचकर उसकी हत्या करवा दी थी। हम मार्कुस 6:19-20 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, इसलिए हेरोदियास उससे बैर रखती थी और यह चाहती थी कि उसे मरवा डाले, परंतु ऐसा ना हो सका, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उसे बचाए रखता था और उसकी सुनकर बहुत घबराता था, पर आनंद से सुनता था। क्या हेरोदियास हेरोदेस को परमेश्वर से दूर रख रही थी? हम मार्कुस 6:21-22 पद में आगे पढ़ते हैं, और ठीक अवसर पर जब हेरोदेस ने अपने जन्मदिन में अपने प्रधानों और सेनापतियों और गलील के बड़े लोगों के लिए जेवनार की, और उसी हेरोदियास की बेटी भीतर आई और नाचकर हेरोदेस को और उसके साथ बैठने वालों को प्रसन्न किया, तब राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। मित्रों, हेरोदियास ने अपनी पुत्री को हेरोदेस के समक्ष अश्लील नृत्य करने के लिए भेजा, क्योंकि वह जानती थी कि बूढ़ा हेरोदेस दुष्चरित्र मानव था। हेरोदेस ने उसे मुंह मांगा वर दे दिया। हम मार्कुस 6:23-24 पद में पढ़ते हैं, और उससे शपथ खाई कि मैं अपने आधे राज्य तक जो कुछ तू मुझे मांगेगी मैं तुझे दूंगा। उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा कि मैं क्या मांगू। वह बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। मित्रों, उसकी माँ इसी बात की प्रतीक्षा में थी। इस स्त्री की पार्श्विकता हमारे दिल को दहला देती है। मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 25 और 26 पद में हम आगे पढ़ते हैं, वह तुरंत राजा के पास भीतर आई और उससे विनती की कि मैं चाहती हूँ कि तू अभी यहोना बपतिस्मा देने वाले का सिर एक थाल में मुझे मंगवा दे। तब राजा बहुत उदास हुआ, परंतु अपनी शपथ के कारण और साथ बैठने वालों के कारण उसे टालना न चाहा। मित्रों, हेरोदेस की एक और दुर्बलता यहाँ दिखाई देती है। वह झूठा अभिमान दिखाना चाहता था। उसे वचनबद्धता के विषय उसकी समझ विकृत थी। उसके मित्र क्या कहेंगे, उससे वह डर गया। और तब हम मार्कुस 6 उसके 27 और 28 पद में पढ़ते हैं, और राजा ने तुरंत एक सिपाही को आज्ञा देकर भेजा कि उसका सिर काट लाए। उसने जेल खाने में जाकर उसका सिर काटा और एक थाल में रख कर लाया और लड़की को दे दिया, और लड़की ने अपनी माँ को दिया। मित्रों, यह निर्दयतापूर्ण हत्या थी। तब हम मार्कुस 6 के 29 में पढ़ते हैं, यह सुनकर उसके चेले आए और उसकी लोथ अर्थात लाश को उठाकर कब्र में रखा। यहूना के शिष्य उसके सिर कटे हुए धड़ को ले गए और दफना दिया। मार्कुस लौटकर यीशु की सेवा का ब्यौरा देता है। शिष्य अपने कार्यों का वर्णन करते हैं, तो यहां पर ध्यान दीजिए कि वे पूर्ण विवरण नहीं दे रहे हैं। आगे हम मार्कुस 6 उसके 30 और 31 पद में पढ़ते हैं, प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बता दिया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी जंगली स्थान में आकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। यीशु का व्यस्त जीवन और काम के बोझ को समझना हमारे लिए संभव नहीं है। उसे निर्जन क्षेत्र में जाकर विश्राम की आवश्यकता पड़ती थी, साथ ही वह अपने शिष्यों को भी विश्राम देना चाहता था। हम मार्कुस 6 उसके 32 से 34 पद में पढ़ते हैं, इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए और बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। मित्रों, एकांतवश की आशा करना व्यर्थ था। ज्यों ही यीशु अपने शिष्यों के साथ गलील सागर के पार उतरा, त्यों ही वहां भीड़ उसकी प्रतीक्षा में थी। यीशु को उन पर तरस आ गया। यीशु के लिए सब मानव भेड़ ही थे, वही अच्छा चरवाहा है। यही कारण था कि उसने पहले उन्हें आत्मिक भोजन दिया और तब शारीरिक भोजन। मार्कुस 6:35-37 पद में हम पढ़ते हैं, जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। उसने उन्हें उत्तर दिया कि तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? मित्रों, यीशु ने उन्हें बड़ा ही असंभव काम दे दिया था, उन्हें भोजन कराएं। उन्हें सीखना था, हमें भी सीखना है। वह हमेशा असंभव काम करने का आदेश देता है, कारण प्रकट है कि वह कुछ करना चाहता है। मार्कुस 6 उसके 38 से 44 पद में हम पढ़ते हैं, उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली भी हैं। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पाती पाती से बैठा दो। वे 100, 100 और 50, 50 करके पाती पाती बैठ गए, और उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसें, और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी और सब खाकर तृप्त हो गए, और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई और कुछ मछलियों से भी। जिन्होंने रोटियां खाई वे 5,000 पुरुष थे। मित्रों, यह एक आश्चर्य कर्म है। जिस सृष्टिकर्ता ने आरंभ से मछली की सृष्टि की और अन्न को भूमि में उपजाया, अब अपने आदेश से जनसमूह के लिए भोजन उत्पन्न करता है। हो सकता है कि जनसमूह में से ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पहली बार भरपेट भोजन किया है। मार्कुस 6 उसके 45 पद में हम पढ़ते हैं, तब उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। मित्रों, तुरंत और विवश, इन दो शब्दों में आपात स्थिति का अभिप्राय निहित है। इसका भेद यूहन्ना 6:15 में प्रकट है। यीशु ने जान लिया था कि वे उसे राजा बनाने के लिए आवाज उठाएंगे। मार्कुस 6:46-52 पद में हम पढ़ते हैं, और उन्हें विदा करके पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया, और जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था, और जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाड़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे, क्योंकि वे उन रोटियों के विषय में न समझे थे, परंतु उनके मन कठोर हो गए थे। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पत्रस द्वारा पानी पर चलकर यीशु के पास आने का उल्लेख नहीं है। इसका सीधा सा कारण यह है कि मरकुस को पत्रस ने सुसमाचार का विवरण सुनाया था, अतः उसने अपने बारे में कहना उचित न समझा। मत्ती इसका उल्लेख करता है, परंतु यहाँ पर नहीं मिलता है। मैं पद 48 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वहां पर लिखा है, उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए, अर्थात नाव चलाते चलाते घबरा गए, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, अर्थात विपरीत थी। मित्रों, शिष्य ऊंची लहरों के विरुद्ध नाव चलाते चलाते थक कर चूर हो गए थे। यीशु ने देखा कि वे नाव चलाते चलाते घबरा गए हैं। मुझे यह बहुत आश्चर्य लगता है, और मैं नहीं जानता कि इस समय आपकी परिस्थिति क्या है। हो सकता है कि आप बड़ी जटिल परिस्थिति में हैं, अंधकार में बैठे हैं, आप ऐसी परीक्षाओं और समस्याओं से घिरे हैं जो दुनियावर है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपका जीवन नया डूबने वाली है। मेरे पास आपके लिए एक शुभ समाचार है। मेरे मित्रों, वह आपको जूझते हुए देख रहा है। मित्रों, आपको संकेत देने की आवश्यकता नहीं है, वह पहले से सब कुछ देख रहा है। काश आप आज अपना जीवन विशेष रूप से उसे दे देते। अंधकार में फिर जाने पर हमें यही करना चाहिए। उसने उन्हें परिश्रम करते देखा। केवल मरकुस ही इसका उल्लेख करता है। वह वहां आया और नाव में प्रवेश कर गया। आगे मरकुस लिखता है, वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। मित्रों, अध्याय के अंत में हम देखते हैं कि वह गन्नेसरत गया। मरकुस 6:53-56 पद में हम आगे पढ़ते हैं, और वे पार उतरकर गन्नेसरत में पहुंचे और नाव घाट पर लगाई, और जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को खाटों पर डालकर जहां जहां समाचार पाया कि वह है वहां वहां लिए फिरे, और जहां कहीं वह गांवों नगरों या बस्तियों में जाता था तो लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। मित्रों, आज हम उसके द्वारा चंगे किए गए रोगियों की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैंने किसी एक ऐसे मसीही वर्ग के बारे में सुना जो विश्वास से चंगाई पाने वाले को $1,000 देने की घोषणा कर चुका था। मुझे बताया गया कि किसी ने वह पुरस्कार नहीं उठाया। आश्चर्य की बात है, यीशु के युग में ऐसे हजारों रोगी लाए जा सकते थे जिन्हें यीशु ने चंगा किया था। मेरे मित्रों, यीशु ढोंगी नहीं था, वह सच्चा था। यही कारण था कि उसके वैरियों ने उसके आश्चर्य कर्म से कभी इनकार नहीं किया था। मित्रों, यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं कि इस कार्यक्रम के द्वारा आप अवश्य ही आशीष प्राप्त कर रहे हैं। यहां पर हम जिस प्रकार से देखते हैं कि यीशु अपने चंगाई के कार्य को लोगों तक पहुंचा रहे थे, और लोग अपने जीवन में उस अंधकार से, उस बीमारी से छुटकारा पा रहे थे, वह आज भी ऐसा ही करते हैं। यदि हम उसके पास अपने आप को लाते हैं, अपने जीवन को उसके पास रखते हैं, तो निश्चय ही वह हमें हमारे रोगों से आजाद करते हैं। क्या आज आप अपने बीमारों से, अपने जीवन के उन पापमय जीवन से छुटकारा पाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज आप भी प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, उसे अपने जीवन में काम करने का मौका दीजिए, और देखिए कि वह आपके जीवन में अपनी शांति को प्रदान करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
तू आशीष मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु। तेरा प्रकाश मुझ में हो प्रभु, तेरा ही तेज मुझ में हो प्रभु, तेरा प्रकाश मुझ में हो प्रभु, तेरा ही तेज मुझ में हो प्रभु। मसीह प्यार का तेरा प्यार मुझ में हो, सत्य तू प्रभु तेरी सच्चाई मुझ में हो। तू है मसीह प्यार का तेरा प्यार मुझ में हो, सत्य तू प्रभु तेरी सच्चाई मुझ में हो। यीशु तेरी रूह से मुझे भर दे प्रभु, यीशु तेरी रूह से मुझे भर दे प्रभु, आशीष मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु। तेरा प्रकाश मुझ में हो प्रभु, तेरा ही तेज मुझ में हो प्रभु, तेरा प्रकाश मुझ में हो ही तेज मुझ में, ओ प्रभु।